आज एक यूनिकनेस है और वो ये है कि आज हमारे पास कुछ अफराद तो हैं लेकिन ये अफराद बेसिकली ताजिर नहीं है, ये प्रोफेशनल्स हैं।
बात जो फाइनेंस की होती है, कारोबार तजारत की होती है, लेन देन की होती है, तो इस तबके के जहनों में तजारत के लोगों से ज़्यादा सवाल होते हैं। मेरे पास आपको याद होगा एक बंदा आया था, उसने आकर कहा कि मुफ्ती साहब मेरे 20 लाख डॉलर फॉरेक्स ट्रेड कंपनियों पे फंसे हुए हैं।
उसका मेरा एक डॉलर भी नहीं था लेकिन मैं उस फर्द को नहीं भूलता मैं।
किताब लोगों को बताइएगा ये दुनिया कितनी जो है ना वो खतरनाक है, खासतौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं जो इदारे बोगस होते हैं, फेक होते हैं, ये ऐसे लोगों पे आ सकते हैं या ऐसी स्कीम लेकर आते हैं जिसमें सामने वाले के 2-4 लाख रुपये डूबते हैं। 2-4 लाख वाला बोलता है कि मैं केस करने जाऊंगा तो मेरे तो कुछ ज्यादा खर्च हो जाएंगे, वो जा ही नहीं रहा होता,
वो बैठ ही जाता बेचारा,
बैठ जाता है।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کا ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی۔ اور جیسا کہ پچھلے ہفتے جو آپ نے ہمارا پروگرام احکام تجارت دیکھا تھا اسی کی یہ سمجھے تسلسل ہے اور اگلی قسط اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، پینل ہمارے ساتھ وہی ہے، ہمارے ساتھ فرقان صاحب ہیں، عمیر صاحب ہیں اور ادھر ہمارے کامران صاحب ہیں اور عماد گھانچی بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ان کے سوالات ہوں گے پچھلے سلسلے کی طریقے سے اور انشاءاللہ اس پر ڈیبیٹ بھی ہوگی، جو ان کو اشکالات ہوں گے وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے اور مفتی صاحب جوابات دیں گے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، آپ جھلکیاں بھی دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ نئے سوالات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو پہلے ہم درود پاک کی فضیلہ شامل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بالکل مخیل نہیں ہوں گا بیچ میں اور بڑھیں گے ہم سوالات کی طرف، انشاءاللہ آخر تک دیکھنے کی نیت رکھیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، دلچسپی بھی ہوگی اللہ نے چاہا تو، بڑے اچھی اچھی باتیں اور علم دین کا خزانہ آج بھی حاصل ہونے کی میں امید کرتا ہوں۔ عمیر بھائی کی طرف سے بڑھیں گے اور عمیر بھائی پہلا سوال آپ کا شامل سلسلہ کر رہے ہیں، کیا پوچھیں گے آج کے سلسلے میں؟
مفتی صاحب یہ ٹیکسیشن کی حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، انکم ٹیکس ہے، سیلری پہ بھی لگتا ہے، بزنس پہ بھی لگتا ہے اور ایک طرف سیلز ٹیکس لگتا ہے پروڈکٹس کے اوپر، تو اسلام میں، اسلامک اکانومی میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ پہلے کے دور میں جب اسلامک سسٹم تھا تو یہ اپلیکیبل تھا تو کس موڈ میں تھا؟ سیکنڈلی جبکہ دیکھیں تو یہ آپ ایکسپینس پہ لگتا ہے، یعنی آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ کی انکم ہوتی ہے تو اس پہ بھی انکم ٹیکس لگتا ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے آپ کی ایسیٹس پہ لگتا ہے جو کہ آپ کی سیونگز ہوتی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟
پہلے بتائیں فرقان، میں تو نہیں کہتا سوال کرنے کا۔
نہیں نہیں وہ ظاہر
آپ خود بھی متاثر ہیں میری طرح، ٹیکس کے طور پر متاثر ہے، ایک عام آدمی صابن خریدتا ہے وہ بھی 17% جو جی ایس ٹی دیتا ہے،
ایسا ہی ہے۔
فرقان بھائی کا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں آپ، تو ان کی طرح جو نا وہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو ٹیکس کی وجہ سے،
سر سیلری کلاس ہم ہیں تو ہمیں بھی ایک دکھ ہوتا ہے،
سیلری کلاس جو نا زیادہ ٹیکس دیتا ہے،
ایسا ہی
بزنس مینوں کے پاس ایسے ایسے خانچے موجود ہیں کہ ان کو تو بچا لیتے ہیں آرام سے، سیلری والا بچا ہی نہیں سکتا۔
ٹھیک ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں؟
الحمدللہ، یعنی میں سیلری پرسن ہوں، ٹھیک ہے، تو میری سیلری سے بھی ٹیکس کٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سیلری کے علاوہ جو ٹیکس ہے وہ تو اس کے تو پوچھے نہیں نا، آپ پیٹرول خریدیں تو ٹیکس، صابن خریدیں تو ٹیکس، کھانا کھائیں تو ٹیکس۔ کل میں نے جو نا وہ یہاں فیضان مدینہ کے باہر ایک کینٹین ہے
جی،
اس کے مالک کو میں نے میسج بھیجا، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو 80 روپے کی چائے کر دی آپ نے، 12 روپے ٹیکس اس پہ شامل کر دیا، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے اب کیا کریں مہنگائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو چائے پہ 12 روپے کا ٹیکس چل جا رہا ہے ہمارا۔
اللہ،
اب وہ تھوڑی اسٹینڈرڈ کی کینٹین ہے، وہ بل بناتی ہے، بل بناتی ہے تو اس پہ ٹیکس جاتا ہے، آپ ڈھابے سے خریدیں گے ٹیکس نہیں وہاں پہ،
صحیح،
ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں ڈھابا چونکہ یہاں ہوگا لیکن وہ ذرا چائے مجھے وہاں کی اچھی لگتی ہے، تو میں نے تو ارادہ کیا کہ میں نہیں پیوں گا بھائی اتنی مہنگی چائے، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ हम सभी
वो
टैक्स
क्या
दे
हम
रहे हैं।
खिला देंगे आपको चाय?
नहीं वो ऐसा थोड़ी है, तो वैसे बात अर्ज कर रहा हूँ, कहने का मकसद ये
सारी
है,
जिंदगी आपसे चाय पीते रहे तो कभी पिला भी देंगे
कहने का मकसद ये है कि हम सभी मुतासिर हैं,
जी।
ठीक है, तो जरूरी नहीं कि फरकान मैंने दिया हो आपको। तो देखिए रियासत जो है वो किस तरह चलती है, बेसिकली तो सवाल ये है जो तो आपने पूछा ना, कब से था, कैसे था, क्यों कर था। खुलफा राशिदीन के जमाने में तो टैक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, और उस जमाने में जो रियासत के खर्चे हैं वो भी कम थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जो लोग अल्लाह की राह में जा रहे हैं उनकी कुछ सैलरी हो, ठीक है। हाँ फकरा को, गुरबा को, मतलब कि रियासत सपोर्ट करती थी, खाना पीना उनको देती थी। एक हदीस पाक में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला परेशान खड़े हुए हैं और अर्ज कर रहे हैं बारगाह रिसालत में कि बैतुल माल में कुछ भी नहीं है, कुछ लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, और ये ना हो कि वो लोग कुफर तक लौट जाएं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता था रियासत उनकी किफालत करती थी,
ठीक
खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, बैतुल माल कायम था, बैतुल माल की आमदनी के जराए थे। यानी जो ये दौर है इसमें ज़कात जो है वो रियासत लिया करती थी, रियासत मदीना ज़कात लेती थी। कुरान पाक ने आमिलीन का तذکرہ किया है, ये आमिलीन जाके वसूल किया करते थे, लाके जमा कराते थे, और वो खर्च होती थी। उसके बाद फिर बादशाहत का दौर आ गया, यानी खिलाफत जाती रही, और शख्सी बादशाहत का दौर आ गया, बनू उमैया का दौर रहा, बनू अब्बास का दौर रहा, रियासत भी फैल गई। और फिर बादशाहत में तो फिर बैतुल माल तो मान पड़ जाता है ना, ऐसा नहीं है कि बैतुल माल नहीं होगा उस दौर में भी, बादशाह के दौर में भी बैतुल माल तो लामवाला होगा, लेकिन फिर जाती जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा थी। ये दूसरा दौर था, मतलब पहला दौर था खिलाफत, दूसरा दौर है बादशाहत, बनू उमैया, बनू अब्बास। उसके बाद एक तीसरा दौर आता है, वो है मलुकियत। यानी पहले ये था कि जनाब मिस्र से लेकर और बगदाद तक एक ही रियासत है, ठीक है। फिर मलुकियत आ गई कि जनाब जो रशियन कंट्रीज हैं वहाँ एक अलग मुसलमानों की हुकूमत है, तुर्कों में एक अलग मुसलमानों की हुकूमत है, हिंदुस्तान में एक अलग मुसलमानों की हुकूमत है, अलग अलग रियासतें कायम हो गई, ये मलुकियत कहलाती है। तो टैक्स का तस्करा किताबों में मिलता है सदियों पुरानी, मैंने जो मुझे याद है कि 700-800 साल पुरानी जो किताबें हैं उनमें मैंने टैक्स का तस्करा पढ़ा है, और फुका ने लिखा है कि रियासत अगर टैक्स लेती है तो इसका देना जायज़ है, क्योंकि बड़े बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स रियासत को लगाने होते थे। अब देखें वो जो नहरे जुबैदा है,
जी
बगदाद से नहर खींच कर लाई गई है मक्का मुकरमा तक, वो जाती खर्च पर लाई गई थी, तो उनके पास इतना खजाना था कि वो जाती खर्च पर उन्होंने वो कायम की। लेकिन जो नहरें हैं, जैसे मैं, मेरे वालिद साहब रोहतक के थे, ठीक है, इंडिया में वहीं पैदा हुए थे, मैं से हिजरत करके यहाँ आए, मैं रोहतक की तारीख पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा कि वहाँ नहर जो ना एक मुगलिया बादशाह थे उस दौर में खींच के लाई गई, उससे पहले वहाँ नहर थी ही नहीं,
ठीक, ये निजाम बनाया।
दरिया थे, दरिया मतलब समुद्र में गड़ जाते हैं जाके, दरिया से आप नहर निकाल के मुल्क के कोने कोने तक पानी पहुंचा रहे हैं तो एक फलाही काम है ना, उसकी वजह से बंजर ज़मीनें आबाद होंगी, ना जाने क्या 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 फ़वाद हासिल होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब रियासतें बड़ी होती गई, जिद्दत आती गई, या खजात बढ़ते गए, तो फिर टैक्स लेने का सिलसिला शुरू हुआ और उलमा ने इसको जायज़ कर दिया। बुनियादी तौर पर तो इसका ताल्लुक नज़्म व नस्क के साथ है, मतलब रियासत जो है ना उसका एक नज़्म है, उसका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जब वो अप्लाई करती है लोगों पर एज ए कानून के, तो हम सबको उसको फॉलो करना होता है। रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि भाई दुनिया में आज तक वो काम नहीं हुआ जो आप कर रहे हैं, रियासत उलमा को देती है, उलमा से लेती
देती है
है?
तारीख की किताबों में तो यही
खैर
मिलेगा।
कोई मेरा कोई ज़्यादा टैक्स नहीं करता, 5-7 हज़ार रुपये कट जाता है, ठीक है, लेकिन अगर नेचर वाइज देखें तो उलट हो रहा है ना, बजाय इसके कि वो दे वो तो ले रही है, ठीक है। आज तक कोई ऐसी स्कीम आई है भाई, नौजवानों के लिए स्कीम, औरतों के लिए स्कीम, फलां के लिए स्कीम, कोई ऐसी स्कीम आई है कि भाई उलमा के लिए स्कीम? ठीक है, वो मुफ्त ना दे,
गवर्नमेंट सतह पे
एक मिसाल है, मुफ्त ना दे,
जी
वो भाई कर्जा दे रही है, कर्जे हसना उतने वापस लेगी जितने उसने दिए हैं, उलमा घर बना लें, ये जरूरत पूरी कर लें, पैसे वापस दे देंगे, चेंज हो गया बिल्कुल सिस्टम।
जी
लेकिन एक आम आदमी जो है उसका भी तो हक है रियासत पर, और ऐसा नहीं है कि आम आदमी को रियासत फैसिलिटेट नहीं कर रही। आप जिला अस्पताल में चले जाएं, जो ऑपरेशन वहां हो रहे हैं, आप बड़े अस्पताल में जाकर पूछें, कोई 20 लाख बोलेगा, कोई 30 लाख बोलेगा, सारा मुफ्त है। रियासत के फलाही काम और पब्लिक को जो फैसिलिटेट करना है उसके काम बिला शुबा बेशुमार हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। करप्शन होती है, करप्शन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अंडर द टेबल एक मामला है, वो हर शोबे के अंदर है। ये करप्शन अगर रुक जाए तो हमारे जो फलाही काम है वो बढ़ जाएंगे। ये बजट का पैसा, जैसे आवाज़ आती है कि जनाब फला काम किया गवर्नमेंट ने और इतना काम तो सही हुआ, इतने काम में वो करप्शन हो गई,
जी
अगर पूरा पूरा वो सही हो तो लोग ऊपर आना शुरू हो जाए ना,
जी
मतलब सैलाब आया है, इमदाद आई, फला मौके पर गवर्नमेंट ने पैसा तकसीम किया, फला पे किया, अगर मुस्तहिक तक जाएगा तो गरीब लोग ऊपर आएंगे ना, फिर अगर पैसा बचेगा तो तरक्याते काम ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं है कि तरक्याते काम नहीं है, जिस जिन सड़कों पर हम सफ़र करते हैं, जो सहूलियात हमने इख्तियार की हुई हैं, ये वो हैं कि जो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कुछ मुल्क वो हैं जो इससे ज़्यादा पब्लिक को सहूलियात दे रहे हैं, जो बेरोजगारों को मंथली अलाउंस देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, टैक्स वहाँ क्यों देते हैं? अच्छा फिर आप जाके पूछें यूके में कितना टैक्स करता है,
40% से
ठीक है ना, 40% करता है। अगर वहाँ सहूलियात ज़्यादा मिल रही हैं तो वहाँ सैलरी पर्सन टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है, और वहाँ सैलरी पर्सन के अलावा जो अफराद हैं वो भी ज़्यादा हैं टैक्स देने वाले, यहाँ तो टैक्स देने वाले हैं ही कम, मतलब
टैक्सपेयर
जब
ज्यादा
तादाद आती है तो पता चलता है कि जी लाखों में सिर्फ करोड़ों में भी नहीं है।
जी। और
जी
जो
तो यूँ कॉन्सेप्ट के अतबार से तो ठीक है, बस करप्शन नहीं होनी चाहिए।
ठीक है मुस्तफ, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि उमेर भाई ने ज़कात का भी खर्च के तस्करा किया था अपने सवाल में, तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं जनाब हमने टैक्स दे दिया तो अब ज़कात भी अदा हो गई।
माजल्ला सुमा माजल्ला भाई, टैक्स दे दिया आपने तो मुलाजिम को तनख्वाह भी दी है, कल को हम कहेंगे कि ये भी गरीब है, उसको तनख्वाह तो हम दे रहे हैं, ज़कात अदा हो गई, ठीक है। कल को हम आप कहेंगे हम बच्चे को जो ना सिर तफरी करा कर ले आए हैं,
वहाँ भी पैसे दिए
पैसे दिए हैं, तो क्या ज़रूरत है मस्जिद में देने की, क्या ज़रूरत है अल्लाह की राह में देने की, हम खर्च ही तो कर रहे हैं,
जी,
ये भी तो मखलूक है, ये भी तो
ठीक है,
इंसान है,
गरीबों को भी जा रहे हैं।
ये भी तो हक है, गरीब को देने की क्या ज़रूरत है, इसी को दे रहे हैं हम। हर चीज़ को अलग अलग देखना ज़रूरी है। रियासत को जो हम देते हैं टैक्स की सूरत में, ज़कात नहीं है, ठीक है, ज़कात का अपना एक निज़ाम है भाई, रियासत तो उससे भी लेती है जो मकरूज़ है।
जी
जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उस पर टैक्स बनता है, आप पेट्रोल लेने गए,
जी
ठीक है, तो आप पर कर्जा है, आप ज़कात के मुस्तहिक हैं, आप कुछ भी हैं, उसको लेना ही लेना है।
ठीक है,
तो कौन जो अक्लमंद है जो कहेगा कि जनाब ये जितने भी टैक्स कट रहे हैं ये ज़कात इसमें चली गई, तो अक्लमंद आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। बात यह है कि टैक्स फिर भी मुश्किल है, ज़कात तो बड़ी आसान है। टैक्स भाई सैलरी किसी की 12 लाख रुपए है पूरे साल की, अब पूरा साल उसने इसी फिगर पर टैक्स देना है। ज़कात के मुताबिक शरीयत कहती है कि भाई इस 12 लाख रुपए में से आपने पूरा साल जो खाया कमाया कोई उसका हिसाब नहीं है, वो जो दिन जिस दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है वो दिन जब आएगा तो आपके पास क्या अमाउंट है। अगर आपके पास उस दिन अमाउंट है 1.5 लाख रुपए बस, और कोई कैश है ही नहीं, सिर्फ इस 1.5 लाख पर ज़कात देनी है आपको,
ठीक है, यानी 12 लाख में से 10.5 लाख आप खर्च कर चुके हैं, अभी 1.5 लाख ही
कोई
है।
हिसाब ही नहीं उसका।
ठीक
टैक्स का निज़ाम अलग, उसकी दुनिया अलग, ये शरीयत के कानून, शरीयत के जाब्ते, अल्लाह रसूल के अहकाम, कहाँ टैक्स कहाँ ज़कात, इन दोनों का तकाबुल तो करना ही नहीं चाहिए ना। और जो बिलफर्ज ये समझता है कि ज़कात की ज़रूरत नहीं है, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, कितनी बड़ी गलती पर है। 1500 साल से मुसलमान जो कुछ निकालते आ रहे हैं, क्यों इबादतों में खलल डाला जा रहा है, मुसलमान इबादत कर रहे हैं, ज़कात एक आला तरीन इबादत है, ठीक है, तो ज़कात का तसव्वुर ही क्या होगा फिर, तो पूरा तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। जो अहद रिसालत में तसव्वुर दिया गया, जो उसके बाद दिया गया, 1500 साल से जो तसव्वुर दिया गया, वो तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा फिर। तो आप आए कि जनाब ज़कात ना दो, ये क्या बात है।
चलें जी, एक एक सवाल हुआ था और उसके ऊपर हमारी अच्छी खासी गुफ्तगू भी हो गई, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि अच्छा खासा सीखने को भी मिला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इमाद भाई, क्या सवाल है आपकी तरफ?
सर ये इस्लामिक बैंक जो अपनी मतलब कि हमारी जो इंटरेस्ट की बैंक है, तो इसमें जो इस्तेमाल की जाती है कि ये इस्लामिक बैंक है, इस्लामी बैंक है, तो ये इस्तेमाल इस्तेमाल करना दुरुस्त है। आप इन बैंकों को इस्लामी समझते हैं, आप ये समझते हैं कि इन बैंकों को इस्लामी कहा जा सकता है जो हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं?
देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो सूद से है। सूद एक हराम प्रोडक्ट का नाम है, बस सूदी प्रोडक्ट जहां भी होगी वो हराम प्रोडक्ट कहलाएगी। इस्लामी बैंकों ने सूद के मुकाबले में कुछ प्रोडक्ट मुतारफ करवाई हैं। इस्लामी इस एतबार से कहलाती हैं ये कि भाई एक बंदा है ए लेवल से, ओ लेवल से उसने पढ़ा, उसने नाम तक कभी नहीं सुना, सीए करने वाले हैं, आप लोगों ने 15 साल 16 साल पढ़ा है, आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना कि मुराबा कोई चीज़ है। हालांकि वो अमल है जो मुसलमानों में राइज है, हदीस में बयान किया हुआ है, मुदारबत, शराकत, ठीक है, इजारा, कुरान पाक से साबित है इजारा, ठीक है। तो इन बैंकों ने जिसका सबूत कुरान और सुन्नत से है उनको लेके प्रोडक्ट्स बनाई हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं किसी सूदी बैंक से तो वो सूद पे मिलती है, कहता है भाई थर्ड पार्टी से आपको गाड़ी खरीदनी है, मैं थर्ड पार्टी को पैसे रिलीज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं 50 लाख रिलीज कर रहा हूँ तो मैं उसके बदले आपसे 70 लाख रुपये वापस लूँगा। इस्लामी बैंक ये नहीं करता। इस्लामी बैंक कहता है कि जी ये गाड़ी है हम आपको किराए पर देंगे, इसके हम मालिक हैं। एक उसका मॉडल ये है, एक से ज़्यादा मॉडल काम करते हैं। अब सूद से हटाकर किराए के मॉडल पर आना, किराए का वो मॉडल वो है कि जो एक इस्लामी तरीका है, घर बेच रहे हैं वो, कि अभी हम पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप करके हम आप या आप आपको हम घर बेच रहे हैं और इसमें आधा हिस्सा हमारा है, उसका हम किराया लेंगे, ठीक है, फिर एक वक्त आएगा हम आपको गिफ्ट कर देंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं इसकी जो बुनियाद है उन इस्लामी तालीमात पर है कि जो 1400 साल से चली आ रही हैं। इस मुनासबत से इनको इस्लामी बैंक कहा गया कि भाई ये प्रोडक्ट वाइज चलती हैं और उन प्रोडक्ट्स की एक अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका एक प्रोसेस फ्लो बनता है, उन प्रोडक्ट को जो है वो पूरा वॉच किया जाता है, डिबेट की जाती है, बनाया जाता है। उस पर जुजवी इख्तलाफ तो हो सकता है, जैसे मुझे कई प्रोडक्ट्स पर जुजवी इख्तलाफ मौजूद है, मैं समझता हूँ कि भाई इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। हाल ही में एक तकाफुल कंपनी के साथ हम इंगेज रहे और हमने कहा कि भाई आपके बुनियादी स्ट्रक्चर में खराबी मौजूद है, आप दूर करें पहले वो, और उन्होंने उसको फॉलो किया और काफ़ी हद तक हमारी बातचीत जारी है, उसको फॉलो भी किया। जुजवी इख्तलाफ तो मेरा हो सकता है, वो इख्तलाफ है एक इल्मी इख्तलाफ, एक फरोई इख्तलाफ। अब इसमें कुछ उलमा अहले सुन्नत वो हैं कि जो कहते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे निगाह में ये बात हम इसको जायज़ कहते हैं, इसकी ये इल्मी वजूहत हैं। मेरे जैसे कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, इस पे हमें कुछ तहफ़ुज़ात हैं। तो ये वो है एक जुज़वी तहफ़ुज़, मुझे ये तहफ़ुज़ नहीं है कि भाई ये सूद है, सूद नहीं है, इस बारे में मैं क्लियर हूँ कि सूद नहीं है। मैं कहता हूँ भाई ये जो आपकी शिक है या ये जो शर्त है इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, इसको यूं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी डिबेटेबल मामला है, ऐसा नहीं है कि बैंक जो है ना कोई डिक्टेटर है, उनको तो काम चाहिए। वो कहते हैं कि भाई मेरे को काम चाहिए, मुझे बताओ कहाँ खराबी है, मैं दूर कर देता हूँ। वहाँ लचक मौजूद है, ऐसा नहीं है वहाँ लचक ना हो। हम आजकल एक स्पेशल पूल पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का स्पेशल पूल है। हमने एक बैंक में जाके मीटिंग की और उसके प्रेसिडेंट मौजूद थे, इस्लामी बैंक में एक मतलब इस्लामी बैंक था कोई, तो हमने कहा कि भाई आप ये तीन बातें हमारी माने तो फिर हम इसको अलाउ करेंगे। तो उस पर हमारी डिबेट चल रही है, बातचीत चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जुजवी इख्तलाफ तो किया जा सकता है लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सूदी है। बाद लोग कहते हैं इस कान पकड़ो इस कान पकड़ो, एक बात है, असल में उनको उन्होंने देखा ही एक कान है आज तक, दूसरा कान उन्होंने देखा ही नहीं है, ठीक
सही सही
है ना, उन्होंने एक ही दुकान देखी है आज तक, इस्लामी तालीमात का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये तो ज्यादती होगी ना कि अगर एक चीज़ के अंदर कहीं एक गलती पाई जाती है तो आप उसको कहेंगे इसमें 100 गलती पाई जाती हैं, 100 गलतियों को 100 गलतियां कहा जाएगा, एक गलती को एक गलती कहा जाएगा, फर्क करना जरूरी है।
आपके जवाब से तो मतलब कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आप कहना चाहते हैं कि आज के दौर में मतलब बैंक चल सकता है विदाउट सूद, विदाउट इंटरेस्ट, मतलब बैंकिंग
बिल्कुल चल
सेक्टर
सकता है,
जैसे
काबिले
भाई
अमल है,
मुमकिन है?
काबिले अमल है, बिल्कुल काबिले अमल है, मुमकिन है।
चैलेंज इस्लामी बैंकिंग के हवाले से भी सवाल हुआ, फिर बढ़ता हूँ मैं फुरकान भाई की तरफ। फुरकान भाई मजीद क्या सवाल करेंगे?
मुफ्ती साहब, जैसे आजकल महंगाई का बहुत शोर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग जैसे हम जैसे लोग हैं और दूसरे सैलरीड पेशा लोग हैं, उनके पास सेविंग्स होती है, वो सेविंग्स को अपनी कहीं पे वो ये चाहते हैं कि कम से कम फ्यूचर में महंगाई से उसको कोई प्रोटेक्शन हासिल हो जाए। तो इसके लिए जो सबसे कॉमन चीज़ है वो लोग ये करते हैं कि डॉलर लेके ख़रीद के रख लिया, या गाड़ी कोई लेके ख़रीद के रख ली, या सोना लेके ख़रीद के रख लिया, कि बाद में इसकी जो कीमत बढ़ेगी तो बाद में इन्फ्लेशन होगी तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ज़खीरा अंदोजी की सूरत तो नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक साथ डॉलर ख़रीदने या सोना ख़रीदने मार्केट में जाएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसकी जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी।
ठीक,
इस बारे में शरी हुक्म क्या है?
देखिए, तिजारत तो जायज़ है ना, तिजारत जायज़ है।
ठीक,
अब कोई भी तिजारत है, कोई ख़ास कोई पस मंज़र ऐसा आ जाता है उसकी वजह से नाजायज़ भी हो सकती है, वो एक ख़ारजी पस मंज़र होगा। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जहाँ उलमा ने नाजायज़ कहा है, ऐसा नहीं कि हर मौके पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ है। गंदम आई है अभी पंजाब में, तो अभी कट रही है गंदम की फसल, अभी सारी गंदम बेच दी जाए, कोई जमा नहीं करेगा, बेचो बेचो। आप बाहर का बंदा बैठा हुआ आके कोई कहेगा अफगानिस्तान भेज दो, कोई कहता रशिया, रशिया तो होकर आती है, कोई कहता फलाम मुल्क में भेज दो, फलाम मुल्क में भेज दो, यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो बाज़ औक़ात एक चीज़ का उस इलाके में होना भी ज़रूरी होता है, अगर वो निकल जाएगी तो कहाँ बचेगी फिर? तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुतलकन नाजायज़ नहीं है। दो शरायत उलमा ने बयान की हैं इसकी, एक तो यह है कि भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ताल्लुक़ है अजनास से, यानी वो इंसानों की या जानवरों की ग़िज़ा से उसका ताल्लुक हो।
ठीक,
अगर उससे ताल्लुक नहीं है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नहीं आएगी, तो क्योंकि उसकी वजह से फिर अज़ियत पहुँचती है, डायरेक्ट अज़ियत पहुँचती है। दूसरा यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस वक्त मना है कि जब कहत का मामला हो, कहत पड़ जाए, और कहत में तो आप रिलीज करेंगे नहीं रोकेंगे। एक तीसरा पहलू भी उलमा ने बयान किया है, वो ये है कि जहां मुसलमानों को इज्तमाही तौर पर जरर पहुंचता हो।
ठीक,
जैसे डॉलर के हवाले से एक होता है रूटीन में खरीदना, जिसके पास पैसा है वो खरीद ही रहा होता है।
ठीक,
ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीद रहा होता, सेंस की बात होती है, बस औकात वो कुछ और खरीद रहा होता है, फिर उसकी तवज्जो आती है मुझे डॉलर खरीदने चाहिए। जिसका पैसा नहीं हो तो आज भी नहीं खरीद रहा,
सही,
और जिसके पास है अब बढ़ाएं डॉलर तो, लेकिन इस बढ़ने से पहले भी लोगों के पास डॉलर भरे हुए थे, जिसके पास था उसके पास था। मामला यह है कि एक होता है कि भाई वक्ती तौर पर यह कहा जाए कि भाई आप ऐसा ना करें, मतलब कल को ये मार्केट में आवाज़ उड़ जाए कि भाई डॉलर खरीद लो, तो जिन लोगों को बेचारों को बाहर जाना है, ठीक है, शो मनी करवानी है, उनको पास रखने हैं, उनको नहीं मिलेगा, हाजियों को नहीं मिलेगा, मार्केट में काल पड़ जाएगा, पेमेंट्स करनी है, तो यूं वक्ती तौर पर इस तरह की जो हैजान की जो कैफियत है ये बरपा ना हो, ऐसी सूरत हाल से तो मना किया जाएगा, हैजान की कैफियत जब बरपा होती है तो। लेकिन एक नॉर्मली ट्रेडिंग होती है, खरीदो फरोख्त होती है, उससे कैसे मना कर सकते हैं?
ठीक,
आम तिजारत है, तो तिजारत के जो मकासद हैं वो यही हैं कि बेनिफिट उठाया जाए, नफ़ा हासिल किया जाए। तो पिछले एक साल से पहले गाड़ियों का नाम ही नहीं था इस चीज़ के अंदर, लेकिन पिछले साल जब ये देखा और ये जब माहिरीन माशियात ने लिस्ट जारी की कि सबसे ज़्यादा टॉप पे गाड़ियाँ गई हैं, यानी 20 लाख गाड़ी की गाड़ी जो ना वो 45 लाख की हो गई है
जी,
ठीक है, मतलब 100% से ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ी हैं, तो अब लोगों की तवज्जो गाड़ियों की तरफ भी है। अब गाड़ियों में ऐसा नहीं है कि गाड़ियां जनाब वो काल पड़ जाएगा, मामला इसका उलट हो रहा है, गाड़ियों के खरीदार नहीं है सब
जी,
ठीक है ना, खरीदारी उसकी डाउन हो चुकी है क्योंकि कुव्वत खरीद जो है वो कम हो गई है
जी।
तो ऐसा नहीं है कि हर मौके पर ज़ख़ीरा अंदाज़ी करना मना हो, या उससे कोई इज्तमाही ज़रर लोगों को पहुँचता हो या इज्तमाही नुकसान लोगों को पहुँचता हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कभी कंडीशन होती है तो फिर उलमा गाइड करते हैं कि इस मौके पर क्या करना चाहिए।
ठीक है, तो मुसब जो इन्होंने प्रोडक्ट की फरमाई थी, जैसे सोना है, गोल्ड है, कर सकते हैं,
उसको खरीद के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बल्कि सोना तो जो है इसका सबसे बड़ा मकसद रहा यही है।
कि यानी सेविंग, यानी
सेविंग,
एक करेंसी।
बिल्कुल
ठीक, चलिए जी, इस सवाल का जवाब हुआ और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और कामरान भाई देखते हैं आप क्या सवाल कर रहे हैं।
अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो वक्फ इदारे हैं वहाँ डोनेशन जमा होती है, तो वक्फ इदारे क्योंकि महंगाई बढ़ गई, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वक्फ इदारे अगर कोई एंडोमेंट फंड क्रिएट करके इसको इन्वेस्टमेंट करें और उस पर रिटर्न जो भी आए उससे अपने अखराजात पूरे करें, तो ऐसा करना कैसा होगा और क्या दावत इस्लामी इस तरफ कर सकती है या कर रही है?
मेरा ख्याल से आपकी मुराद है चैरिटी इदारे।
जी
हर इदारा वक्फ नहीं होता,
जी
चैरिटी इदारे होते हैं, फलाई इदारे होते हैं, अस्पताल भी हैं, एनजीओ टाइप इदारे भी
जी
हैं और इदारे भी हैं। देखिए जो कामयाब इदारे हैं ना, दावत इस्लामी तो खैर ऐसा नहीं किया अभी तक, जो कामयाब इदारे हैं जैसे एक दो हॉस्पिटल्स के बारे में, कराची में भी एक बड़ा अस्पताल है मुझे उसके बारे में पता है, कि उन्होंने अरबों का एक फंड जमा किया। अब इससे दो फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि इस अरबों का फंड जमा करके जो ऑपरेशनल अखराजात हैं उससे जो नफा हासिल हो रहा है, इन्वेस्ट किया उन्होंने और उससे जो नफा हासिल हो रहा है तो ऑपरेशनल अखराजात उनके निकल रहे हैं।
बिल्कुल
उनको ये परवाह नहीं है कि भाई मुल्क की हालात डाउन हो गए, खराब हो गए, अल्लाह ना करे कोई बड़ी आफत आ गई तो हम ये ऑपरेशन कैसे चलाएंगे।
जी
सबसे बड़ा इदारे का सर्वाइव करना सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। अब वो अस्पताल काम ही ना कर पाए, भाई
ठीक
जनरेटर नहीं है उसके पास,
ठीक है, रनिंग
पास
एक्सपेंसेस जो है
जो फिक्स
डॉक्टर
एक्सपेंसेस
को
हैं उसके। जी
फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो अस्पताल खदमात कैसे अंजाम देगा।
जी
तो यूं बुरे वक्तों से बचने के लिए, एक ख़राब सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा फंड कायम किया और इन्वेस्ट किया, और अगर वो जायज़ जगहों पर इन्वेस्ट हुआ है और आमदनी हो रही है तो ये कहलाती है स्ट्रेटेजी, एक बेहतर प्लानिंग, एक मौसर प्लानिंग, और उस प्लानिंग के जो अजायम है बड़ी नेक है। अच्छा एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नाजुक है, वो ये है कि भाई ये जो इदारे हैं फंडिंग करते हैं लोगों से, क्या लोगों के इल्म में ये बात है कि ये इस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे। बाज़ इदारों पे एतराज़ात भी होते रहे हैं कि भाई इन्होंने पैसा उठा के इन्वेस्ट पे लगा दिया, ठीक है, या तो वो अपने मोटों में इसको शामिल करें, अपने तशहीर में, ऐलान में, मकासिद में शामिल करें कि भाई ये फंड है, हम ऑपरेशन भी चलाते हैं और इस ऑपरेशन की एक प्लानिंग के लिए स्ट्रेटजी के तौर पर हमने एक न्यू सिस्टम भी बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि देखें तदबीर जो है ना मोमिन का हथियार है, मौसर प्लानिंग, हिकमत अमली, स्ट्रेटजी, ये हथियार है मोमिन का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें फरमाया है कि तैयार रहो तुम लोग, ठीक है ना, तैयार रहो, मतलब वो पस मंज़र तो उसका एक ख़ास है, लेकिन जब आपके अज़ाइम नेक हैं, जब आपका मकसद बहुत बड़ा है, अजीम है, तो वो मकसद ख़राब ना हो, प्रॉब्लम ना आए, आपको तैयार रहना पड़ता है ना। तो मेरी बात पूछे तो मैं आज कहूँगा कि भाई ये करना चाहिए ये काम, जबकि तरीका का जायज़ हो आगे का, और ऐसी जगह पर आप पैसा लगाएं जो जायज़ है, न सिर्फ जायज़ है सिक्योरिटी भी उसको, ये नहीं कि जनाब सारा पैसा आपने डुबो दिया। तो दावत इस्लामी में ऐसा अमलन तो नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए ऐसा। ऐसा कब होगा कि जब कौम ये कहेगी कि भाई हमें कोई इशू नहीं है, अगर खैर ज़कात का पैसा तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो ज़कात का पैसा तो इस तरह इन्वेस्ट नहीं हो सकता। जो अतियात आते हैं भाई, एक बड़ा टेलीथॉन होता है मिसाल के तौर पर इस काम के लिए, लोग कितना अतियात देने के लिए तैयार हैं, आप एक बड़ा फंड कायम करें ताकि जो तगज़ुर आता है, कभी फंड आपका अप डाउन होता है तो वो जो पूल है आपका वो काम आ सके, और हमें आप पर एतमाद है, हमें कोई इशू नहीं है, आपको तो करना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, उस तरफ दावत सामने जा सकती है।
सब यानी आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझा हूँ, जो सवाल था हजरत का, कि इस पे पाबंद शरण कोई ममानियत नहीं है अगर तरीकाकार दुरुस्त हो।
क्यों जाते हैं बाज़ इदारे क्या करते हैं भाई, एक जगह मस्जिद बन रही थी
जी,
तो मस्जिद वालों को कहा गया कि भाई आप ना इसमें दुकानें भी निकाल रहे हैं, अपने ऐलान में शामिल करें,
ठीक है,
आप चंदा मांगते हैं भाई मस्जिद की तामीर के लिए चंदा चाहिए, तो
सही,
लोगों के जहनों में जो एक आम कॉन्सेप्ट, हर हर मस्जिद में तो दुकान नहीं बनती ना,
जी
तो आप इसमें ये शामिल करें कि हमारी मस्जिद में दुकानें भी निकलेंगी,
ठीक है,
तो नाराज हो गए लोग, चंदा नहीं देंगे ये बात कर दी, तो किसने कहा कि भाई इसलिए तो ये बात बोली जा रही है
लोग के लिए रूं।
कि जब लोग नहीं चाहते कि उनका पैसा वहां लगे तो फिर आप लोगों का पैसा क्यों लगाएंगे,
ठीक
आपके पास तो राइट ही नहीं है।
ठीक है
अब तो एक तरह से लोगों की अमानत को आगे लेकर चल
ठीक
रहे हैं।
ठीक
तो बात यह है कि उसकी तशहीर हो, लोगों को पता हो कि इदारा जो है ना ये करना चाहता है और इदारा यूं भी करेगा, इजाजत के बाद किया जाएगा ना ये मामला।
ठीक है
ये नहीं है कि आपके पास लोगों ने पैसा जमा करवा दिया आप बादशाह बन गए। चंदा लेने वाला बादशाह कैसे बन सकता है? चंदा लेने वाला तो अमीन है। चंदे का एक अमूमी हुक्म है, वहां खर्च किया जाएगा जिस काम के लिए लिया गया है, मद चेंज नहीं कर सकते इसके अलावा।
ठीक, हमारे सवालात भी हुए, सवालात तो और भी हैं, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगले इतवार को जो सिलसिला होगा उसमें आपकी कॉल्स भी लेंगे। इस सिलसिले के हवाले से भी आप अपने कमेंट्स दीजिए, अपने तासुरात दीजिए, और अगर कोई उनवान, कोई मार्केट, कोई बिजनेस, कोई फील्ड ऐसी है जिस पे आप चाहते हो कि उसको फोकस्ड करके उसके सवालात लिए जाएँ और उस पर शरई रहनुमाई दी जाए तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप, नंबर चल रहे हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, और जब भी अहकाम तिजारत लाइव होता है तो आप इस किस्म के आप हमें कमेंट्स भेज सकते हैं, सजेशन भेज सकते हैं, अपनी मार्केट बता सकते हैं। मदनी चैनल 24/7 जारी है, तो इंशाल्लाह इस पर नशरियात जारी है। हमारे सिलसिले का अख्ताम को पहुँच रहा है, हमें इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले मैं मुफ्ती साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती साहब तो होते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला इन्हीं के जरिए से हो रहा होता है, लेकिन इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके ज़रिए से हमारा जो पैनलिस्ट आए, बिलखसूस हमारे फुरकान भाई आए, उमैर भाई तशरीफ़ लाए, हमारे इमाद घाची भाई आए, और हजरत कामरान हाशमी साहब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इन सबको बरकत अता फरमाए, और जिस नीयत, जिस अच्छी नीयत के साथ ये तशरीफ़ लाए उस पर आखरत में भी अजर और जजा अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अहकाम-ए-तिजारत, अहकाम-ए-तिजारत।